हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अपनी माँ को अनुष्ठान में बैठा हुआ देखकर विक्रांत रंधावा उस गुफा से बाहर निकल आया था और अमन के घर की ओर रवाना हो चुका था। विक्रांत रंधावा ने सोच लिया था, अगर उसकी माँ अनुष्ठान में है तो क्या हुआ, वो अपना सारा समय तारा के साथ बिताएगा। भले ही अदृश्य होकर वो तारा के साथ रहेगा, लेकिन वो तारा के करीब रहेगा। भले ही वो उसे छू ना पाए, लेकिन वो इसकी स्मेल तो महसूस कर ही सकता है। बड़ी ही बदतमीज वाली हंसी हंसता हुआ विक्रांत रंधावा अमन के बंगले में पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो बंगले में गया तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि तारा तो वहां पर थी ही नहीं। जां और करिश्मा जी अकेली हाल में बैठी हुई अपने किसी जानने वाली औरत से बातें कर रही थीं। करिश्मा जी की कुछ किटी पार्टी वाली दोस्त वहां आई हुई थीं, तो वो उन्हीं के साथ बिजी थीं। विक्रांत रंधावा ने जल्दी ही तारा के कमरे की ओर अपना रुख कर लिया था, और जैसे ही वो उसके कमरे में गया उसने देखा तारा उसके अपने कमरे में भी नहीं थी। विक्रांत रंधावा काफी परेशान हो चुका था। वो सीधे सीधे अपना असली रूप लेकर करिश्मा जी से भी नहीं पूछ सकता था कि तारा कहाँ गई है। अब फिर वो एक कमरा अच्छी तरह से देखने लगा था, फिर वो गार्डन में भी चला गया था। ये सब कुछ वो गायब होकर ही कर रहा था, क्योंकि वो किसी की नज़रों में नहीं आना चाहता था। लेकिन विक्रांत रंधावा को पूरे बंगले में तारा नहीं मिली थी। बदले से बाहर आकर विक्रांत अपने असली रूप में आ गया था और सामने की दीवार पर एक घुसा तेजी से मारते हुए सोचने लगा था, आखिर तारा परी कहाँ जा सकती है, क्यों मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। विक्रांत का गुस्से के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो तारा को कहाँ ढूंढे, और वो ना तो वो उसे फोन कर सकता था और ना ही उसे अब तारा मिल रही थी। विक्रांत का गुस्से के मारे बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया था, तो अपने आप को कोसता हुआ और आज का दिन ही मनहूस है ये कहता हुआ वो अमन के ऑफिस की ओर रवाना हो चुका था। उसने सोचा क्यों ना इतना ऑफिस में जाकर बैठ बैठ जाए, हो सकता है तारा से मिलने का कोई ना कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि तारा घर पर नहीं थी। ये विक्रांत रंधावा अच्छी तरह से देख चुका था, साथ ही साथ उसने अमन के घर पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी को अपने फ़ोन से हैक कर लिया था, ताकि वो अमन के शानदार ऑफिस में बैठकर आराम से ये देख पाए कि तारा अगर कहीं गई हुई है तो वो वापस कब आएगी। हालांकि उसने सीसीटीवी अभी हैक किए थे, तो पिछली जो रिकॉर्डिंग थी वो उसे नहीं मिल पाई थी। अगर मिल जाती तो उसे पता चल जाता कि तारा उस समय घर में नहीं थी, बल्कि करिश्मा जी से परमिशन लेकर वो बगीचे में चली गई थी। फ्लैशबैक। विक्रांत रंधावा के ऑफिस जाने के बाद करिश्मा जी तारा के लिए खाने के लिए कुछ ले आई थी। तारा ने खाना खाया था और खाना खाने के बाद उसने करिश्मा जी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया था और कहा था, करिश्मा मॉम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप अमन के पिताजी यानी के अपने पति को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हैं, पर मैं इसमें आपकी मदद करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी मदद करने दीजिए। जैसे ही तारा ने इतने प्यार से कहा, करिश्मा जी खुद को रोक नहीं पाई थी और वो तारा परी का साथ पाकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली थी, बेटा मैं क्या करूँ, तुम नहीं जानते मैं कल रात में अनुष्ठान पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन कल फिर मेरा अनुष्ठान भंग हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तब तारा ने करिश्मा जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा था, करिश्मा मॉम, आज आप मेरे यकीन कीजिए, मैं जानती हूँ आप मेरी सिक्योरिटी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हैं, लेकिन मेरे यकीन मानिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी बहू इतनी भी ज्यादा कमज़ोर नहीं है, मेरे पास पिछले जन्म के तपस्वी महाराज की शक्तियाँ भी हैं, तो मैं अपना ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख सकती हूँ। और रही बात मेरे पेट में पल रहे बच्चे की, तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं ये बच्चा खुद में ही एक ताकत है, जब तक ये मेरे पेट में रहेगा कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ये बात आपने खुद मुझे बताई थी, तो आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हैं, लेकिन मैं अब आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं अमन के आने से पहले पहले उनके पिता के रूप में उन्हें तोहफा देना चाहती हूँ। जैसे ही तारा परी ने करिश्मा जी से ये कहा, करिश्मा जी अपनी आंखों में ममता का भाव लिए तारा की ओर देखने लगी थी। और बोली थी, लेकिन बेटा, पिछले 15 सालों से इतनी शक्तिशाली जिन होने के बाद भी मैं अपने पति को नहीं ढूंढ पाई हूँ। इतना ही नहीं, अमन, जो कि वो भी कितना शक्तिशाली है, हालांकि उसके पास अभी इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो ज्यादा से ज्यादा शक्तियों का मुकाबला कर सके, लेकिन जैसे ही वो जिन महाराज का वंशज बन जाएगा, उसमें अपने आप इतनी सारी शक्तियाँ आ जाएंगी कि वो किसी का भी सामना आसानी से कर पाएगा, और तिलिस्मी पत्थर की शक्तियाँ भी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो शक्तियाँ अभी सिर्फ और सिर्फ अमन की हिफाजत करने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो इस तरह की कोई शक्ति अभी नहीं है, तो तुम कैसे अपने आप को बचा पाओगे और कैसे अपने पिता को ढूंढ कर लेकर आओगे? करिश्मा की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगी थी और बोली थी, अभी तो आपने अमन के पिता को मेरे भी पिता कहा है, और बोली थी, मॉम, आप मुझ पर भरोसा रखिए और मुझे बाहर जाने की परमिशन दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। और आप शायद भूल रही हैं, आपने मुझे जो तिलिस्मी कड़ा दिया है उसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। अगर मुझे लगा कि मैं कोई मुझे परेशान कर रहा है या मुझे कोई परेशानी है, तो मैं उस कड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। और जो आपने जादुई अंगूठी दी है वो भी तो मैं पहने रखती हूँ, तो आप क्यों परेशान होती हैं? अगर आप मुझे इस तरह से कैद करके रखेंगे तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। तारा की बात सुनकर करिश्मा जी को उसकी बेचैनी का एहसास हो गया था और वो समझने लगी थी कि वैसे भी तारा माँ बनने वाली थी, इस तरह घर में ही रहना तारा को घुटन महसूस करवा रहा था। तब करिश्मा जी सोचने लगी थी, आखिरकार है तो ये बेचारी एक इंसान ही ना, आखिरकार कैसे कब तक इस तरह से कैद रह सकती थी? और वैसे भी जब तक तो ये बच्चा तारा के पेट में है, तारा को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो जब है जब ये बच्चा जन्म लेगा, उसके 11 दिनों तक इस बच्चे की पूरी तरह से देखभाल करनी होगी, क्योंकि माँ की कोख से जन्म लेने के बाद इस बच्चे के अंदर कोई शक्तियाँ नहीं रहेगी, और ठीक 11 दिनों के बाद ही उसके अंदर शक्ति आएगी, वो भी एक खास तरह का अनुष्ठान करने के बाद। वेल, तारा के इसरार को करिश्मा जी मना नहीं कर पाई थी और उन्होंने एक अदृश्य जिन तारा के साथ भेज दिया था और उसे बता दिया था कि वो तारा के आसपास रहे और जैसे ही वो उसे किसी खतरे में देखे वो तुरंत आकर करिश्मा जी को बताएं। उस अदृश्य जिन ने जादुई सफ़ेद माला पहन रखी थी जिसकी वजह से वो अदृश्य हो गया था। करिश्मा जी ने उसी जिन को तारा के साथ भेज दिया था और तारा को भी इस बात के बारे में बता दिया था। पहले तो तारा परेशान हो गई थी कि अगर ये जिन उसके साथ जाएगा तो वो किस तरह से बगीचे में दादा जिन महाराज से बात कर पाएगी, लेकिन फिर उसने उस जिन महाराज की शक्ति का अच्छी तरह से अंदाजा था। वो जानती थी जिन महाराज कुछ ऐसा करेंगे कि ये अदृश्य जिन उनकी कोई बात नहीं सुन पाएगा, इसीलिए तारा परी खुशी खुशी बगीचे की ओर रवाना हो चुकी थी। जैसे ही तारा परी ने बगीचे में कदम रखा, उसे अमन के वहाँ होने का एहसास होने लगा था, क्योंकि तारा परी अब दिल की गहराइयों से अमन को प्यार किया करती थी, तो उसे अमन के वहाँ होने का शिद्दत से एहसास होने लगा था। लेकिन अमन उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया था, और जैसे ही तारा परी बरगद के पेड़ के ठीक सामने जाकर खड़ी हुई और उसी के तने के पास बैठा हुआ अमन तपस्या कर रहा था, लेकिन ना तो तारा परी अमन को देख सकती थी, न ही अमन तारा परी को देख सकता था। लेकिन तारा परी का एहसास बार बार उसे ये कह रहा था कि अमन उसके कहीं आसपास है। उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि अमन इस वक्त उसके बिल्कुल ठीक सामने बैठा हुआ था। तारा परी ने जाकर दादा जिन महाराज को सलाम पेश किया था, जिन महाराज तारा के वहाँ आने पर तारा का वहाँ आना महसूस कर चुके थे और फिर उसके सलाम का जवाब देते हुए बोले थे, हे तारा पारी, तुम यहाँ हो, तुम्हारे साथ एक अदृश्य जिन भी है, लेकिन माफ करना तारा पारी, मैं आज पूरी तरह से तुम्हारे सामने नहीं आ पाऊंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ ही सुन पाओगे कि, लेकिन उससे पहले मैं अपने मंत्रों की शक्ति से इस जिन के कानों को बंद कर देता हूँ ताकि इसे हमारे बीच हुई बातचीत कुछ भी सुनाई ना दे। अगर तुम यहाँ आई हो तो ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ खास कारण है, ये बात मैं समझ चुका हूँ। जैसे ही दादाजी महाराज ने ये कहा, तारा परी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और वो सोचने लगी थी कि हमेशा तो उसके जिन महाराज उसके बुलाते ही सामने आ जाया करते थे, फिर आज ऐसा क्यों कह रहे थे कि वो सामने नहीं आ सकते हैं। वो तारा परी कुछ सोचकर उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी थी। जल्दी ही जिन महाराज ने तारा के साथ आए हुए जिन के कानों को बंद कर दिया था और फिर तारा परी से बोले थे, हे तारा पारी, अब तुम मुझसे बात कर सकती हो और बता सकती हो कि तुम्हारा यहाँ किस तरह से आना हुआ है। दादाजी महाराज की बात सुनकर तारापरी ने उनसे कहा था, मैं यहाँ आई तो आपसे ये जानने के लिए थी कि वो राक्षस का अंश किसी इंसान के अंदर है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उसे पहचानने में सिर्फ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन अब मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आप मेरे सामने नहीं आ पा रहे हैं। तारा के बात सुनकर जिन महाराज जी हल्का सा मुस्कुरा दिए थे और बोले थे, बेटी मैं अभी तुम्हें सारा सच बता देता हूँ। तारा के बाद सच जानने के बाद तारा तरी का आखिर क्या फैसला होगा और क्या करेगी अब तारा, जानने के लिए बने रहिए अपनी इस दोस्त के साथ। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।